यह संदेश biblicaltraining.org के द्वारा तैयार किया गया है और इसके वक्ता हैं डॉक्टर बिल मॉन्स। अधिक सामग्री के लिए कृपया आप जाएं www.biblicaltraining.org पर।
परमेश्वर के साथ चलना, पवित्रीकरण। आज मैं परमेश्वर के साथ चलने के विषय में बात करना चाहता हूं। यह शीर्षक मेरे लिए तैयार करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि इन 12 की श्रृंखला में मैं इसको कहां पर डालूं। यदि यह 30 की श्रृंखला में होता तो यह 28वां अध्याय होता, क्योंकि यह थोड़ा सा कठिन है और शायद थोड़ा ज्यादा ही कठिन है। फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 12 संदेशों की श्रृंखला में मैं सभी बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात करूं जिनका सामना एक नए विश्वासी को करना पड़ सकता है। इसलिए बाइबल की भाषा में अपनी कमर को कस लो, तैयार हो जाओ और वहां पर खड़े रहो, क्योंकि हमें पवित्रीकरण के इस पूरे मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता है। पवित्रीकरण एक सुंदर धर्मशास्त्र का वाक्य है जिसका साधारण शब्दों में अर्थ है कि हम पापों से अलग किए गए हैं। पवित्रीकरण का अर्थ है कि हमारे जीवन की मसीही यात्रा में हमें पवित्र बनना है। जब हम मसीही बनते हैं तो हम एक तरह से मसीह में बच्चे होते हैं, और जैसे बच्चे बड़े होते हैं इसी तरह से हम भी आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। आत्मिक बढ़ोतरी देखने में कैसी लगती है? आत्मिक बढ़ोतरी का अर्थ है कि जैसे हम प्रतिदिन चलते हैं हम और ज्यादा यीशु जैसे दिखने लगते हैं और इस संसार जैसे कम दिखते हैं। आत्मिक बढ़ोतरी का अर्थ है कि हमारे व्यवहार और हमारे स्वभाव और ज्यादा मसीह के व्यवहार और स्वभाव को दिखाने लग जाता है। हमारा जीवन आत्मा के फलों को दिखाना शुरू कर देता है। जहां पर पहले कोई प्रेम नहीं था वहां पर प्रेम आ गया है। जहां पर पहले कोई आनंद नहीं था वहां पर आनंद आ गया है, जो हमारे जीवन की परिस्थितियों के ऊपर है। और इसकी जड़ उस शांति में है जो परमेश्वर के साथ है, क्योंकि हमारा मेल हो चुका है। पवित्रीकरण एक ऐसा काम है जिसमें हम संसार के सदृश कम हो जाते हैं और हमारे स्वर्गीय पिता जैसे दिखने लग जाते हैं। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए इच्छा। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा, मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है? जहां परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं अपने जीवन में करूं? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान है। इसका उत्तर 1 थिस्सलुनीकियों उसके 4:3 में है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपका पवित्र होना है। दूसरा सब कुछ विवरण है। परमेश्वर क्या चाहता है कि एक एक कदम पर हम और भी कम संसार जैसे दिखें और उसके पुत्र यीशु जैसे और भी ज्यादा दिखने लग जाएं। बहुत सारी आयतें हैं जो पवित्रीकरण के विषय में बात करती हैं। मेरी पसंदीदा है रोमियों 12:1-2, जहां पर पौलुस रोम की कलीसिया को कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवत और पवित्र और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आप देखिए, परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए यही इच्छा है कि परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा हमें बचाने के लिए क्या क्या किया है। फिर उसके प्रतिउत्तर के रूप में वह कहता है, मैंने सब कुछ बलिदान स्वरूप तुम्हें दे दिया है। मेरी चाहत यह है कि मैं इस संसार के जैसे ना बनूं और मैं संसार को यह अनुमति ना दूं कि वह मुझे अपने सांचे में डाल ले, वरना मैं बदल जाऊं। मैं कानूनी बनकर ना बदलूं या उन कानूनों के द्वारा जिनकी मैं पालना करता हूं, परंतु मैं अपने मन के बदलने से भीतर से बदल जाऊं और यह मेरे जीवन में दिखे। यह पवित्रीकरण है, और ऐसा ही हमारा जीवन परमेश्वर के साथ दिखना चाहिए। परमेश्वर कठिन परिस्थितियों को अनुमति देता है। पवित्रीकरण का सबसे मुख्य प्रश्न है कि क्या हमने आत्मिक परिपक्वता के बढ़ोतरी के कार्य को शुरू कर दिया है, या क्या हमने बदलना शुरू कर दिया है और हम संसार जैसे कम और यीशु जैसे ज्यादा दिखने लग गए हैं। उसके प्रेम और अनुग्रह और उसकी दया और सामर्थ और उसकी प्रभुता, वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मैं यह प्रेमी परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों को आने देता है कि वह हमारी बदलने में सहायता करें, हमारे चलने में सहायता करें, हमारी सहायता करें कि हम और भी यीशु जैसे बन जाएं। एक भला प्रेमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों को अनुमति देगा। वह दुर्घटनाओं को अनुमति देगा, बीमारी को अनुमति देगा, शायद बेरोजगारी को भी अनुमति देगा। और इन सभी अच्छी बातों के ऊपर वह हमें अनुमति देगा कि हम अपने विश्वास के लिए सताए जाएं। ओ अच्छा, हाँ यही है। यह अच्छी बातें ज्यादातर हमारे मित्रों से शुरू होती हैं। हमारे मित्र हमारी ओर देखेंगे और कहेंगे, अरे तुम अलग हो, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम सोचते हो कि तुम हमसे अच्छे हो, आ जाओ हम वही करें जो पहले करते थे। हमारे मित्र यह नहीं समझेंगे जब हम कहते हैं नहीं मैं यह नहीं करना चाहता। शायद हम अपने कामों में दुख उठाएंगे, शायद हम तरक्की को नहीं प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि हमारे बॉस मसीहियों से घृणा करते हैं, शायद हमारे पड़ोसी और हमारे परिवार के सदस्य हमें समाज से बाहर निकाल देंगे क्योंकि वह सोचते हैं कि हम उनसे अच्छे हैं और हम उनके न्याय में खड़े होते हैं क्योंकि हम मसीही हैं। हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी और हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि यह सभी मसीही लोगों के जीवन में आती हैं। मैंने क्या गलत किया? हम इस परीक्षा में पढ़ेंगे कि हम कहें मैंने क्या गलत किया। वास्तव में मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये कठिन बातें बनी हुई हैं। वचन में इसका उत्तर है नहीं, शायद तुमने कुछ सही किया था और इसी वजह से मेरे जीवन में यह कठिन परिस्थितियां आई हैं। इसका वचन में उत्तर है नहीं, शायद आपने कुछ सही किया था जिसकी वजह से यह परिस्थिति आपके जीवन में बनी है। पौलुस अपने मित्र तिमोथियस को 2 तिमोथियस 3:12 में कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। संसार हमारे प्रभु को घृणा करता है और यीशु ने यह कहा है, यदि उन्होंने मुझसे घृणा की तो वह तुमसे भी घृणा करेंगे। इसलिए जब हमारे जीवन में कठिन बातें होती हैं, इसलिए क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं जो इस गिरे हुए संसार में रहते हैं, जहां क्योंकि हम मसीही हैं हम ज्यादातर यही कहेंगे, क्या मैंने कुछ गलत किया है? और इसका संभवत उत्तर यह होगा नहीं, इसका उत्तर यह है कि शायद परमेश्वर आपके जीवन में कुछ सही करना चाहता है, इसलिए वह अपनी प्रभुता में, अपने नियंत्रण में और अपनी भलाई में इन कठिन परिस्थितियों को अनुमति देगा कि हम पवित्रीकरण और पवित्रता में बढ़ जाएं। हम कठिन समयों में बढ़ते हैं, जब समय अच्छे होते हैं हम बहुत कम बढ़ते हैं। क्या यह दुखित बात नहीं है? परंतु यह सत्य है। जब विवाह अच्छा है, जब परिवार ठीक है, काम अच्छा चल रहा है, कार खराब नहीं हो रही है और हमें अभी अपने घर को रंग करवाने की आवश्यकता नहीं है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम में से कितने लोग मसीह में विश्वास में बढ़ते हैं? बहुत से नहीं। परंतु जब दबाव के और चोटों के और कठिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं, यह वह समय है जब यीशु मसीह के जैसे हम बन जाते हैं। यह उसका हमारे जीवन के लिए उद्देश्य है कि हम उसके जैसे लगें। हमारे वास्तविक विश्वास को परखता है। जब कठिन समय उत्पन्न होते हैं तो हमारे जीवन में सब प्रकार की बातें चल सकती हैं। एक काम जो परमेश्वर उस समय के दौरान करना चाहता है जब कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में चल रही हैं, कि वह हमारे विश्वास को परखना चाहता है कि क्या हमारा विश्वास वास्तविक है या नहीं। अब वह जानता है कि क्या हमारा विश्वास वास्तविक है या नहीं, परंतु वह चाहता है कि हम जाने कि यीशु मसीह हमारे विश्वास की चट्टान है। इन कठिन परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर चाहता है कि ना सिर्फ हम उसमें विश्वास रखें, वरन हमारा विश्वास परखा हुआ और शुद्ध हो। 1 पत्रस 1:6-7 में पत्रस बताता है कि मसीही के साथ कुछ बहुत ही अद्भुत होता है। वह कहता है, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यही होता है जब हम कठिन समयों के बीच में से गुजरते हैं, हम परखे जा रहे हैं, हम साफ और शुद्ध किए जा रहे हैं कि हम जान सकें और स्तुति का प्रत्युत्तर दे सके। हम जान पाते हैं कि क्या हमारा विश्वास वास्तविक है और असली है या नहीं। यह मसीही चरित्र को पैदा करता है। जब हमारे जीवन में कठिन समय आते हैं, परमेश्वर उस वक्त हमारे जीवन में क्या कर रहा है कि वह हमारे भीतरी एक मसीही चरित्र का निर्माण कर रहा है। उदाहरण के रूप में रोमियो 5:3 में पौलुस कहता है, केवल यही नहीं वर्न हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। मसीही जीवन एक क्रिया है या नहीं, मैं किसी के विषय में नहीं जानता, परंतु जब हम पहली बार मसीही बने तो हम दुखों की ओर देखकर यह कहते थे, हां यह स्वाभाविक नहीं है परंतु यह अलौकिक है। मसीही जीवन एक यात्रा है और इसमें हम एक समय पर एक ही कदम उठाते हैं, और जब हम इस काम में आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा में आगे जाते हैं, हम अपने दुखों में आनंदित होना सीख जाते हैं। हम अपने दुखों में इसलिए खुश नहीं होते हैं क्योंकि हम सन्यासी हैं, परंतु हम अपने दुखों में आनंदित होना सीख जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें धीरज और चरित्र और आशा पैदा कर रहा है। और यह ऐसे होता है, मेरी इन बातों के विषय में एक और पसंदीदा आयत है और वह है यकूब 1:2-4। हालांकि मैंने कई बार सोचा है कि मैं काली स्याही वाला पेन लेकर इसके ऊपर निशान लगा दूं, परंतु मैंने ऐसे किया नहीं है। यकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूं, नहीं बिल इसे आनंद की बात जान, जह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन के लिए जो योजना है वह यह नहीं है कि हम पीड़ा से दूर रहें, परंतु उसकी यह इच्छा है कि हम यीशु जैसे दिखें, अपनी सभी वस्तुओं के ऊपर प्रभुत्व में, अपने प्रेम और दया में। और सबसे बढ़िया तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर हमें यीशु जैसा बना सकता है वह है कठिन परिस्थितियों को हमारे जीवन में अनुमति देकर। परमेश्वर चाहता है कि हम इन कठिन परिस्थितियों का प्रतिउत्तर भय से नहीं परंतु विश्वास से दें, कि हम सुन सकें, सीख सकें और इस यात्रा में बढ़ सकें और आगे जा सकें। इस रीति से हमारे विश्वास की परख की जाती है और उसे वास्तविक बनाया जाता है। इस रीति से हम यीशु जैसे बनते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमने दो बेटियों को जन्म के समय ही खो दिया था। वह समय था जब मैं पहली बार काला पेन लेने के विषय में सोचा था, मैं इन दो मूर्खता भरी आयतों से छुटकारा पालूं। मैं नहीं जानता था कि मैं इस क्रिया में से कैसे गुजरा, परंतु आज मैं वह नहीं हूं जो 15 वर्ष पहले था। रॉबिन आज वह नहीं है जो 15 वर्ष पहले थी। जय परमेश्वर के प्रभुत्व वाले नियंत्रण की वजह से था और उसके प्रेम, अनुग्रह और दया की वजह से था। परमेश्वर ने मेरे और रॉबिन के जीवन में कठिन परिस्थितियों को अनुमति दी और उनके बीच में उसने कहा, जीवन के तूफानों में ठहरे रहो, और हमने ऐसे ही किया और इसी वजह से आज हम यहां पर हैं। और इसका अर्थ है कि हमारे दो बच्चे और भी हैं जो स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्रतिउत्तर है कि जीवन को खंडों में बांटना। जब कठिन समय हमारे जीवन में आते हैं, प्रश्न यह होता है कि इसका प्रतिउत्तर कैसे देंगे। आशा करते हैं कि हम परमेश्वर जिस योग्य है उसे पकड़ रखेंगे। फिर भी मैं जानता हूं कि परीक्षाएं आएंगी। परीक्षा से हम भाग कर शिप जाएं, परीक्षा की हम पीड़ा को सहार ना लें। हमें परीक्षा होगी कि हम जो भी कर सकते हैं पीड़ा से बचने के लिए वह करें, जहां पीड़ा को किसी भी तरह बंद करके उसे रोक दें। एक तरीका है जिसके द्वारा हम पीड़ा को रोकने की परीक्षा में पड़ते हैं, और वह है अपने जीवन को खंडों में बांटना। मैं यह इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यह सभी मसीही लोगों के लिए सत्य है। हम परीक्षा में पड़ते हैं कि हम अपने जीवन को भिन्न भिन्न भागों में बांट दें और कहें, परमेश्वर मैं आपको अपना सब कुछ नहीं दूंगा। इसलिए हम अपने जीवन के कई कमरों के द्वारों को बंद कर देते हैं और हम कहेंगे, मैं अपने जीवन का एक हिसाब को दूंगा, परंतु मैं अपने जीवन का वह हिसाब को नहीं दूंगा क्योंकि वह बहुत पीड़ादायक है और वह बहुत पीड़ा देता है। मैं सोचता हूं कि हमारा जीवन एक रजाई जैसा है जिसको अलग अलग कपड़ों के टुकड़े लगे हैं, और हम कहते हैं, ठीक है परमेश्वर, यह हिस्सा आपका है, मैं आपको यह दे दूंगा, परंतु दूसरे हिस्से में मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि वह बहुत ही पीड़ादायक है। मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता हूं और मैं नहीं सोचता हूं कि आप मेरे बारे में सबसे अच्छा सोचते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं और मैं अपने जीवन के दूसरे हिस्से को अपने तक ही रखना चाहता हूं। और जीवन एक छोटी सी अलग अलग कपड़ों से बनी रजाई बन जाता है। आप में से जो लोग नए मसीही हैं, आपके लिए यह सुनना शायद थोड़ा कठिन लगे। मैं निराशा का नबी नहीं हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यह वह चुनौती है जो आपके सामने खड़ी है। शायद आपने इनमें से कुछ को पहले ही महसूस करना शुरू कर दिया होगा। समय को खंडों में बांटना। प्रश्न यह है कि जब आप अपने जीवन को खंडों में बांटेंगे तो क्या होगा? जैसे आपकी परीक्षा होगी कि आप अपने समय को खंडों में बांटें। आप इस परीक्षा में होंगे। यह हिस्सा रविवार की सुबह है और यह वह समय है जो मैं परमेश्वर को देना चाहता हूं, और यह उसका समय है। फिर भी दूसरे दिन और समय अपने लिए रखूंगा। यह रजाई के अलग अलग हिस्से हैं। परमेश्वर, मैं आपको यह हिस्से देता हूँ, आप रविवार के साथ ही बहुत खुश होंगे। मैं रविवार की दोपहर और अपने काम का सारा समय, जो भी सप्ताह का समय है, उसे मैं अपने पास ही रखूंगा। आपको परीक्षा होगी कि आप अपने समय को खंडों में बांट दें। आपको यह भी परीक्षा होगी कि आप अपने पैसे को खंडों में बांट दें। और इस बात को समझें कि परमेश्वर को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब उसी का है। परंतु यीशु ने कहा, यहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। और यही डंडी लग जाती है और विचार विमर्श खत्म हो जाती है। फिर से यह एक परीक्षा होगी। हम अपने पैसे को खंडों में बांटते हैं ताकि हमारे पास एक हिस्सा जहां हो, और यह हमारे जीवन की रजाई का हिस्सा बन जाता है जो हमारे खुले पैसों को दिखाता है। अभी यह इतना नहीं है कि यह हमारे जीवन शैली के ऊपर प्रभाव डाले। यह हमारे खुले पैसे हैं जो हम परमेश्वर की ओर फेंकते हैं। क्या आपको पता है, परमेश्वर आपको खुश होना चाहिए। इन पैसों को देने के बाद हम अपना पैसा इन दूसरे हिस्सों पर अपनी मर्जी से खर्चते हैं और हम कहते हैं, परमेश्वर यह पैसा आपका नहीं है। आपको पता है कि मुझे इस पैसे को अपने धन और निफ्टी के लिए रखना है, ताकि जब मैं सेवा मुक्त हो जाऊं मुझे तुझ पर भरोसा ना करना पड़े। यह पैसा मेरे बड़े घर के लिए है और यह मेरी तीसरी कार के लिए, हालांकि घर में सिर्फ दो लोग हैं जो कार चलाने वाले हैं। पैसे को खंडों में बांटना, जब हम पैसे को खंडों में डालते हैं हम यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ उसी का है। हमारा शरीर भी उसी का है। वो हम मेमने के कीमती लहू के द्वारा खरीदे गए हैं और हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर के धन के भंडारी हैं और हमें बुलाया गया है कि हम धन को उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करें। और जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हमें लेखा देना पड़ेगा कि हमने परमेश्वर के पैसे का इस्तेमाल कैसे किया। फिर भी परीक्षा होगी कि हम खंडों में बांटें और कहें, ठीक है परमेश्वर, यह है मेरे खुले पैसे, बाकी सब मेरा है। अपने स्नेह को खंडों में बांटना। आप इस परीक्षा में भी पढ़ेंगे कि आप अपने स्नेह को बांटें। आप इस परीक्षा में पढ़ेंगे, इस स्थिति में, इस हिस्से में मैं परमेश्वर को इस तरह से प्रेम करूंगा, परंतु जीवन के दूसरे हिस्सों में वह मेरा हृदय नहीं ले सकता है। मैं दूसरे हिस्सों में उसे अपना स्नेह नहीं दूंगा। मेरे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में मैं उसे अपने स्नेह को नहीं दूंगा। मेरे जीवन के इस क्षेत्र में उसके पास मेरा स्नेह है, और मैं रविवार की सुबह चर्च में जाऊंगा और मैं एक अच्छी सी धार्मिक मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर वहां लोगों से मिलूंगा। और यदि कोई मुझसे पूछे आप कैसे हैं, तो मैं उत्तर दूंगा, मैं ठीक हूं। और यह शब्द ठीक है अंग्रेजी भाषा से निकाल देना चाहिए। यह एक भयंकर शब्द है। ठीक है का अर्थ है, मेरा जीवन इस समय बहुत ही सुस्त है, परंतु मैं जानता हूं कि आप बहुत परवाह करते हैं, इसलिए मैं इसे छिपाकर पेश कर रहा हूं। कम से कम मेरे घर में तो इसका यही अर्थ है। हम चर्च में जाएंगे, हम एक चेहरा दिखाएंगे कि हम ठीक हैं और हम मुस्कुराते हुए गीत गाएंगे, परंतु हम इंतजार नहीं कर सकते कि कब हम घर जाएंगे और वहां जाकर अश्लील वेबसाइटों को देखेंगे, ऐसे मैगजीन खोलेंगे और छोटे लड़के और लड़कियों से शोषण करेंगे। मैं सर्वेक्षण को जानता हूं। अमरीका के 50% आदमी सप्ताह में एक बार पोर्न साइट्स पर जाते हैं। 25% औरतों का जोन शोषण किया जाता है, और मैं इसे भी सर्वेक्षण के द्वारा जानता हूं। और कलीसिया संसार से भिन्न नहीं है, इसलिए हमारे पास हमारा स्नेह है। ओ परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, परंतु मैं इंतजार नहीं कर सकता कब मैं घर जाऊं और जाकर नंगी औरत को इंटरनेट पर देखूं। यह बीमार कर देने वाला है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आपकी परीक्षा होती है कि आप खंड बना दें। आपकी परीक्षा होगी कि आप अपनी जीभ को खंडों में बांट दें। ठीक है, मैं अभी परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लूंगा और मैं यह कुछ शब्द बोलने बंद कर दूंगा, परंतु मैं लगातार चुगली, निंदा और आलोचना करता रहूंगा और लोगों को नीचे दिखाता रहूंगा। खंड करने की परीक्षा हर जगह पर वास्तव में है, और काश यह सत्य ना होती। मैं सच में आशा करता हूं, काश परमेश्वर ने वस्तुओं को अलग रीति से किया होता। उसने मुझसे पूछा नहीं था, परंतु काश ऐसा होता। काश के जब मैं मसीही बना, पाप मेरे जीवन से पूरी तरह से हट जाता और मेरे जीवन में यह चुनौती ना होती और पाप मुझे ना की। सब कुछ परमेश्वर को दो। मैं चाहता हूं, काश मैं अपना आप पूरी तरह से परमेश्वर को दे पाता। काश मैं अपने हृदय के कुछ कमरों के द्वार बंद ना करता, परंतु यह वास्तविकता है। परमेश्वर ने अपने प्रेम और बुद्धि में देखा कि यह सबसे अच्छा है, और वह सही है और मैं गलत हूं। हर बार परमेश्वर सही है और मैं गलत हूं। इस रीति से परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम मसीह की समानता में बढ़ें। कठिन परिस्थितियों में और चुनौती भरे समों में हम अपने हृदय के सभी द्वार हमें खोल देने चाहिए और अलग अलग कपड़ों से बनी रजाई को फेंक देना चाहिए कि हमारे पास एक ही टुकड़ा हमारे जीवन का हो जो उसका हो। मैं बहुत डरता हूं कि यदि आप जवान मसीही हैं तो आप इतने घबरा जाएंगे कि आप जहां से यह कहते हुए भाग जाएंगे, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता हूं। याद रखें, यह एक यात्रा है, एक क्रिया है, यह कुछ है जिसे हमें हर कदम पर जीते हैं। कई बार हमारे पास दो या तीन चुनौती होंगी, परंतु मैंने अक्सर ही अपने जीवन में देखा है कि परमेश्वर एक समय पर एक ही समस्या आने की अनुमति देते हैं। वह कहता है, ठीक है बिल, अभी समय है कि तुम अपने जीवन में इस मुद्दे का सामना करो। तुमने उस व्यक्ति को सही प्रत्युत्तर नहीं दिया, वास्तव में तुम उस व्यक्ति के प्रति बहुत ही क्रोध में थे, तुम इसके ऊपर कार्य करो। सबसे भयंकर काम जो हम कर सकते हैं, जब चुनौती आती है तो आप खंडों में रखते हैं और आप कहते हैं, नहीं परमेश्वर, मैं यह आपको दे दूंगा, परंतु मैं कुछ हिस्से अपने पास रख रहा हूं, क्योंकि यह सौदा हमने नहीं किया था। जब हम मसीही बने, हमने यह समझा कि यीशु ही मुक्तिदाता है, वह प्रभु है, वह बॉस है, वह प्रभु है और हम उसके शिष्य हैं। पौलुस क्रिंथ के लोगों से कहता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में और हर वस्तु में परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए, जिसमें हमारे शरीर भी शामिल हैं। यीशु ने अपना सब कुछ मुझे और आपको दे दिया और वह यही हमसे अपेक्षा करता है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि वह हमें अपने चेले कहता है। यीशु हमें चेले बुलाता है क्योंकि उसे पूरा समय पूर्ण समर्पित चेले चाहिए। ऐसी कटनी वह चाहता है। चार तरह की भूमि के दृष्टांत में एक ही तरह की भूमि को किसान स्वीकार करता है जो पूरी कटनी देती है। इसलिए शिष्यता के क्षेत्र में एक ही वस्तु को परमेश्वर स्वीकार करता है और वह है यीशु मसीह के पूर्ण समर्पित शिष्य होना। ऐसी कई आयतें हैं जो इसके विषय में बाइबल में हमें बताती हैं, जो मैं सोचता हूं कि शिष्यता की सबसे महत्वपूर्ण आयत है। और यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा चेला, मेरा शिष्य, एक मसीही बनना चाहता है, वह अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे आए। मरकुस 8:34। यदि हम यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छा का इनकार करना होगा, हमें अपने आप को नहीं कहना होगा और फिर प्रतिदिन हमें ऐसे जीना होगा जैसे किसी ने अपनी इच्छा को क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रतिदिन हमें वह कहना चाहिए जो यीशु ने बाग में कहा था, मेरी नहीं वर्ण तेरी इच्छा पूरी हो जाए। इस रीति से हम पूर्ण समर्पित शिष्य बनते हैं। यीशु यह भी कहते हैं, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। धनी जवान शासक का दृष्टांत हम में से प्रत्येक के ऊपर लागू होता है। पौलुस गलातियां 2:20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। यदि आप एक मुहावरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसने यह नहीं कहा मैं मसीह के द्वारा काट दिया गया हूं, उसने यह नहीं कहा मैं मसीह के द्वारा जख्मी हो गया हूं, ना ही शायद मैं मसीह के द्वारा थोड़ा अपंग हो गया हूं। उसने कहा मैं मसीह के द्वारा क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मैं नहीं जीवत हूं परंतु मसीह मेरे में जीवत है। क्या होगा यदि हम खंड बनाएंगे? रोमियो 12:1-2 कोई अलग अलग कपड़ों से बनी रजाई जैसा जीवन जीने की अनुमति नहीं देता है। रोमियो हमें बताता है कि हम अपने शरीरों को, जो कुछ भी हमारे पास है, उसे परमेश्वर के सामने हमें अर्पण करना चाहिए और जो कुछ भी हम परमेश्वर के सामने बलिदान करें। और इसका अर्थ है कि हम संसार जैसे नहीं दिखेंगे परंतु हम भीतर से परिवर्तित हो जाएंगे। और यह वह चुनौती है जिसका हम सभी सामना करते हैं और शायद हम भी करते हैं। क्या होगा यदि हम अपने जीवनों को खंडों में रख देंगे? क्या होगा यदि हम कुछ टुकड़े अपने पास रखेंगे? क्या परिणाम होंगे यदि हम अपने जीवन के सभी द्वार नहीं खोलते हैं? ठीक है, यह शुरू होगा परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते का नुकसान करने के द्वारा। जैसे हम पाप करते हैं, हम यह पाते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच में कुछ है। हम दोष का अनुभव करेंगे और दोष की भावना एक अच्छी बात है। हम निराशा का अनुभव करेंगे जैसे बात आगे बढ़ती है और सब और अच्छा नहीं होता है। परमेश्वर अपनी शांति को हमसे दूर करना शुरू कर देगा, वह अपनी आशीषों को हमारे जीवन से हटाना शुरू कर देगा। और अंत में हमें बताया गया है कि एक प्रेमी स्वर्गीय पिता होने के नाते परमेश्वर अपने बच्चों को उनके पाप के लिए अनुशासित करेगा। क्रूस की पर्याप्तता। सुसमाचार का अद्भुत संदेश यह है कि परमेश्वर दया और अनुग्रह का परमेश्वर है। वह अपनी भलाई हमारी और हमारी आवश्यकता में करता है और उनको देता है जो इसके योग्य नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह और दया की वजह से हम जब भी चाहें पाप के इस कुएं में जाने से रुक सकते हैं। परमेश्वर और हमारे बीच में जो दीवार है वह हटाई जा सकती है और शांति और आशीष हमारे जीवन में फिर से आ सकती है। इसके लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है और वह है पश्चाताप। हमें सिर्फ एक ही काम करना है और वह है अंगीकार करना। हां परमेश्वर, एक बार फिर से आप सही हैं, मैं गलत हूं, एक बार फिर मैं अपने मार्ग पर चला गया और मैं सच में क्षमा चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है और उसकी दया हमसे निकल जाएगी और हमारे पाप को हमसे इतना दूर कर देगी जितना पूर्व से पश्चिम दूर है। फिर हमारा रिश्ता और शांति और परमेश्वर की आशीष की बहाली हो जाएगी। यह क्रूस की पर्याप्तता की शिक्षा का हिस्सा है जिसके विषय में हमने कई बार पहले बात की है। यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर पर्याप्त थी कि वह संसार में जो लोग पाप की क्षमा के लिए दुहाई देते हैं उनके पापों को मिटा दे। और यह ना सिर्फ हमारे पापों की क्षमा के लिए है, उस वक्त वास्तविक था जब हमने विश्वास किया, और आज भी उसके बच्चे होने के नाते जो पाप हम करते हैं उसके लिए भी पर्याप्त है। चाहे हम कितनी बार भी कहें, चाहे हम कितने भी बुरे हो जाएं, चाहे हम अपने पसंदीदा पाप, हम सभी का कोई ना कोई पाप होता है या नहीं, को कितनी भी बार करें, क्रूस उस पाप को मिटाने के लिए पर्याप्त है। क्या होगा यदि हम सब कुछ उसको नहीं देख, यदि हम मसीह के पास आए और उससे क्षमा मांगे और वह हमारे पापों को क्षमा करेंगे और नीचे फिसलने का काम वहीं रुक जाएगा। यह तो मसीही जीवन में आनंद और स्वतंत्रता है या नहीं? दीवार के ऊपर दोनों तरफ पैर फैलाकर बैठने में कोई आनंद नहीं है? दीवारें कभी भी पैर फैलाकर बैठने के लिए नहीं बनी आई गई थी। दीवारें कभी भी पैर फैलाकर बैठने के लिए नहीं बनाई गई थी। जब तक हम दीवार पर पैर फैलाकर बैठते हैं हम अपने जीवन को हिस्सों में बांटते हैं। परमेश्वर के आगे और हम में से कुछ लोगों के आगे रजाई वाला जीवन जीते हैं, हम बहुत ही निराश लोग रहेंगे। फिर भी यह आनंद और स्वतंत्रता का वायदा जो परमेश्वर ने किया है तब पूरा होता है जब हम कहते हैं यह सब आपका है, सारे द्वार खुल गए हैं। और दुख की बात यह है कि हम हर वक्त यह करते रहते हैं। और मसीही होने के नाते अपने आश्वासन को खोना, हम कभी भी फिसलन से रुकते नहीं हैं, क्योंकि हम से कुछ है जो परमेश्वर से पैदा हुए बच्चे होने के बावजूद भी पाप करना चाहता है। कई बार हम अपने पाप को अंगीकार नहीं करते हैं। क्या होगा यदि पाप हमारे जीवन में लगातार रहेगा और वह फिसलन हमें और भी आगे ही आगे कूड़ा करकट में ले जाएगी। कूड़ा करकट जनानी भाषा का शब्द है जो वास्तव में मुक्स होती है और वास्तव में नहीं, हालांकि इसको होने पर कई वर्ष लग जाते हैं। और अंत में जब हम परमेश्वर को नहीं कहते रहते हैं और हमारे पाप में बने रहते हैं तो हम उस आश्वासन को खो देंगे कि हम मसीही हैं, हम वह हयाब खो देंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। समझे, हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास से बचाए जाते हैं, यह हमारी ओर से नहीं है, यह वरदान परमेश्वर का है। हम अपने पापों में मरे हुए थे इसलिए नहीं कि हम इसके योग्य थे, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर दया और अनुग्रह का परमेश्वर है। उसने हमें कूड़े करकट से उठाया और उसने हमें अपने राज्य में लेकर आया। मैं उस वक्त मुर्दा था, मैंने उस वक्त उसकी कोई सहायता नहीं की। मुक्ति अनुग्रह के द्वारा है, परंतु परिवर्तन में परमेश्वर ने हमें बदल दिया। परमेश्वर के बदले हुए बच्चे के रूप में उसने हमें कहा कि वह हमारे जीवन को भी बदलना चाहता है। वचन का संदेश यह है कि यदि आपका जीवन और मेरा जीवन लगातार बदलता नहीं है तो फिर हम एक जगह पर पहुंचेंगे जहां हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम वास्तव में मसीही हैं या नहीं। मैं आपको यह प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं नहीं विश्वास करता कि यह मेरा काम है, परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सभी को अपने आप से यह प्रश्न पूछना होगा, क्या मैं वास्तव में मसीही हूं? क्या मेरा परिवर्तन वास्तविक था? आश्वासन एक ही घटना से नहीं आती है। मुक्ति का आश्वासन एक उठे हुए हाथ के द्वारा या एक कैंप में की हुई प्रार्थना के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, परंतु यह परमेश्वर के बच्चे होने के रूप में हमारे आश्वासन पर निर्भर करता है। बाइबल बताती है कि यह सब पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में काम के साथ जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा मेरे कानों में फुसफुसा रहा है, हां बिल, तुम परमेश्वर की संतान हो, देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदल रहा है। और जो बदलाव मेरे जीवन में आ रहे हैं वह इस आश्वासन के ऊपर आधारित हैं कि वास्तव में हम परमेश्वर की संतान हैं। मैं इसे अपने आप नहीं बना रहा हूं। बहुत सारे पदों में से एक पहला यूहन्ना 2:3 है जहां यूहन्ना कहता है और उसके द्वारा हम जानते हैं कि हमने उसे जाना है। इस रीति से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आ गए हैं, कि हम मसीही हैं। यदि हम चर्च में या कैंप में या वर्ष में दो बार चर्च में हाथ उठाएं तो क्या हमें ऐसे पता चलता है? नहीं, यह ऐसा नहीं है। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसमें एक आश्वासन है। उसकी आज्ञाओं को मानना परमेश्वर के पक्ष को कमाने की कोशिश में नहीं, परंतु बदले हुए जीवन के प्रत्युत्तर के रूप में। जो भी कहता है मैं उसे जानता हूं, जो भी कहता है मैं मसीही हूं, परंतु उसकी आज्ञाओं को ना मानू तो मेरा स्वर्ग में एक छोटा सा घर है और कुछ काम नहीं जो मैंने स्वर्ग में करना है। गलत वह झूठा है और सत्य उसमें नहीं है। यूहन्ना की भाषा में हम चाहते हैं कि सत्य हम में हो। सिर्फ इसी रीति से हम स्वर्ग में जाते हैं। इसी रीति से आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता हो सकता है। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। यह एक परिवर्तित जीवन है। और फिर यूहन्ना कहता है, सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। हमारा आश्वासन, हमारा पूर्ण चट्टान जैसा विश्वास यह है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारे आत्मा के मेल के द्वारा, कि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसके द्वारा चलता है। रोमियो 8 बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमें दिखाता है कि अपने जीवन की ओर देखो, यह बदल रहा है। क्या तुम सोचते हो कि तुमने यह अपने आप कर दिया? क्या तुम सोचते हो कि शैतान चाहता था कि तुम्हारा जीवन बदल जाए? मैं हैरान होता हूं कि क्या ऐसी कोई शक्ति पूरे संसार में है जो तुम्हारे दिल को बदल सके? बिल, सिर्फ एक ही है जो इतना शक्तिशाली है कि वह तुम्हारे हृदय को बदल सके, और वह है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। यह हमारे जीवन का जो बदलाव है वह हमारे विश्वास का हिस्सा है कि हम उसकी संतान हैं। कितना भयानक होगा उन लोगों के लिए जो लदुकिया में जाते थे जब उन्होंने प्रकाशित वाक्य की लिखी हुई पुस्तक को प्राप्त किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखी हुई पुस्तक को प्राप्त करना, और जो ऐसे शुरू हो उनको जो शिलोह हिल्स फेलोशिप में जाते हैं। देखिए यह प्रकाशित वाक्य में हुआ। आत्मा 7 कलीसियाओं को लिखता है और वह लदुकिया की कलीसिया को कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं जानता हूं कि तेरा जीवन कैसा है, कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। ठंडा पानी अच्छा है और गर्म पानी भी अच्छा है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रकाशित वाक्य 3:15-16। आप देखिए, स्वर्ग में पिछली सीट नहीं है, क्या है? अक्सर ही हम शरीरक लोगों के बारे में सोचते हैं कि वह दूसरे दर्जे के मसीही हैं या कुछ और, परंतु जो मसीही लोग लदुकिया में रहते थे, मैं शिलोह हिल्स फेलोशिप से भी यही आशा करूंगा, या लोग जो दावा करते हैं कि वह मसीही हैं परंतु गुनगुने हैं, वह मुंह से उगले जाएंगे। इसके पश्चात 19 आयत में वह कहता है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यह होता है जब आप और मैं पाप करना पसंद करते हैं, जब हमारे जीवन के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो पाप में होते हैं और हम सोचते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं सकता, जब तक कोई हमारे इंटरनेट ब्राउजर की हिस्ट्री में जाकर नहीं देखता है और तब पता चलता है कि हम कहां गए थे। हम पाप को पकड़ कर रखते हैं और हम यह पाते हैं कि हमारे पास कोई विश्वास नहीं है कि हम मसीही हैं या नहीं। चेतावनी वाले पद, इंतजार कीजिए, और भी भयानक होता जाता है। ऐसी बहुत सी आयतें हैं जिन्हें हम चेतावनी के पद कह सकते हैं। चेतावनी के पद उन लोगों के लिए नहीं है जो युद्ध में संघर्ष कर रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं, या वे फेल हो रहे हैं और अंगीकार कर रहे हैं। यह वचन में से जो चेतावनी के पद हैं वह उन सभी लोगों के लिए हैं जिन्होंने किसी कैंप में या किसी और जगह विश्वास का अंगीकार किया था। मुझे गलत मत समझिए, मुझे कैंप बहुत पसंद है। यह चेतावनी के पद उन लोगों के लिए हैं जिनके जीवन में एक आत्मिक घटना घटी और उन्होंने अंगीकार किया और उन्होंने सोचा कि उन्हें नर्क से बाहर निकलने का फ्री कार्ड मिल गया है, जिसका अर्थ है कि वह सोचते हैं कि हम किसी भी तरह से जीवन जी सकते हैं और इसकी कोई परवाह नहीं है। उनके जीवन नहीं बदलते हैं। वह सोचते हैं कि परमेश्वर के न्याय के सामने 2.5 इंच और 3 इंच का पीले रंग का कार्ड परमेश्वर के मुख के सामने रख देंगे और कहेंगे, मैं नर्क से आजाद हो गया हूं। परमेश्वर उनकी ओर देखेगा और कहेगा, यह क्या है? मैंने यह पहले नहीं देखा है। क्या तुमने मेरे वचन को नहीं सुना था? ऐसे लोगों के लिए यह चेतावनी का पद है। यूहन्ना 8:31 कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे में जीवित रहोगे, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और यदि तुम उसके वचन में बने नहीं रहते हो तो यह स्पष्ट है या नहीं, तो हम उसके चेले नहीं हैं। यीशु ने कहा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13। जबकि अच्छी तरह से शुरू करना महत्वपूर्ण है, और यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अच्छी तरह से समाप्त करें। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। पौलुस कुलसियों की कलीसिया को कुलसियों 1:23 में कहता है कि उनका मेल परमेश्वर से हो गया है, वह परमेश्वर के मित्र हैं। वह कहता है, यदि तुम विश्वास की नेम पर दृढ़ बने रहो और सुसमाचार की आशा को जिससे तुमने सुना है ना छोड़ो। सबसे मजबूत चेतावनी का पद पूरे इब्रानियों की पुस्तक में बिखरे हुए हैं। 3:14 में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के बागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता में स्थिर रहें। परमेश्वर हमें योग्य करेगा। यह एक रीति से सुहावनी आयत नहीं है, परंतु यह डरा देने वाली आयत है या नहीं? फिर भी हम कैसे जान सकते हैं कि हम 12 सप्ताह की श्रृंखला में से जाएं और नए विश्वासी होने के नाते यह ना देखें कि क्या चुनौती आ रही है? फिर भी, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह और दया का परमेश्वर है, वह हमें योग्यता देगा कि हम वहां ठहरे रहें और अंत तक दृढ़ता में स्थिर रहें। वह कठिन परिस्थितियों में होकर काम करने वाला है। वह हमारे विश्वास को साफ करने जा रहा है। वह हमारे विश्वास की पुष्टि करने वाला है। वह हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनाने जा रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हम और भी ज्यादा उसके पुत्र जैसे बन जाएं। हमारा उसके पुत्र जैसा बनना उसके लिए किसी भी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी इन सभी बातों के बीच में हम वह कदम उठाते हैं। हम अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाते हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा इस संसार जैसे बनने से मना करते हैं, परंतु हम अपने मन के बदले जाने के द्वारा बदलते हैं। जब हम मसीही बन जाते हैं, यीशु हमारा मुक्तिदाता बन जाता है, परंतु वह हमारा प्रभु भी है। बॉस हमें बुलाता है कि हम बढ़ें। वह चाहता है कि हम पवित्रीकरण में बढ़ें। वह बुलाता है कि हम संसार जैसे और भी कम दिखें। जो अंतिम विनती मैं करना चाहता हूं, विशेष तौर पर आप जो नए मसीही हैं, आपके लिए वह यह है कि आप कृपया भयभीत ना हो, क्योंकि मसीह में स्वतंत्रता का आनंद एक क्रिया है। एक समय पर एक एक कदम लिया जाता है। जैसे आप द्वारों को खोलते हैं और अलग अलग कपड़ों से बनी रजाई से छुटकारा पाते हैं, और जैसे आप अपने आप को त्याग कर परमेश्वर की योग्यता में, उसकी शांति में, उसकी अगुवाई में दे देते हैं, जैसे पौलुस क्रिंथ के लोगों को कहता है, आप महिमा से महिमा में प्रवेश कर जाते हैं। मैंने किसी से पहली सभा में बात की जो पिछले सप्ताह मसीही बनी थी। मैंने उससे पूछा, क्या यह बहुत ज्यादा था? उसने कहा, नहीं, मैं जानती हूं कि आगे क्या कुछ रखा हुआ है और मैं बहुत ही उत्तेजित हूं। मैं आशा करता हूं कि यह आपका भी प्रत्युत्तर होगा। हम फेल होंगे, यह अच्छी बात है, नहीं है, परंतु परमेश्वर वहां पर है। यदि हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, वह हमारे पापों को क्षमा कर रहा है। वह हमें अपना पवित्र आत्मा देता है कि वह हमारी सहायता करे कि हम उसका पालन करें। फिर हम अपनी देही को बलिदान स्वरूप उसे चढ़ाते हैं। हम संसार के सदृश्य नहीं बनते हैं, वर्न हम अपने मन के नए हो जाने के द्वारा बदलते जाते हैं। जय परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए और पवित्रीकरण के लिए इच्छा है। इसीलिए प्रश्न साधारण रीति से यह है, क्या आपका जीवन बदल रहा है? क्या आपका जीवन बदलना शुरू हो गया है? क्या आपका जीवन लगातार बदल रहा है? क्या आप एक एक कदम पर मसीह के समर्पित चेले बन रहे हैं? और मेरी प्रार्थना है कि आप हैं।